नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का अपना कार्यक्रम सुहाना सफर में बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जो चमका हुआ है वो औरों को चमकाता है, जो डरा हुआ है वो औरों को डराता है, लेकिन जो खुश रहता है वो सदैव खुशी बांटता है। तो क्यों ना हम एक संकल्प लें कि खुद भी खुश रहें और औरों के अंदर भी खुशियां लाते रहें। हम चर्चा करते आ रहे हैं, हमारे इस सुहाने सफर में क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है। क्रोध पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो उपस्थित है ब्रह्मा कुमार सोई भाई जी, गीता बहन जी, संजय भाई। आप त्रिमूर्ति का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ घर घर में जैसे क्रोध की अग्नि, एक क्रोध की ज्वाला जल रही है। ये भी देखते हैं कि अधिकांश जो लड़ाई झगड़ा का कारण है वो क्रोध है। कोर्ट में आप जाकर के देखेंगे कि जितने भी केसेस आ रहे हैं बहुत सारे उसके कारण जाकर के पता करेंगे तो उसके पीछे क्रोध ही है। जेल में कई बार हम जाते हैं, मिलते हैं, कई भी लोगों से बात करते हैं तो वो लोग यही बताते हैं कि थोड़ा सा क्रोध आया, क्रोध आते ही हमने कुछ कर दिया और उसके कारण से हमें भोगना पड़ रहा है। आखिर पूरा संसार जबकि इसमें जल रहा है, बहुत कम लोग हैं, मैंने तो संसार में किसी को देखा नहीं है, किसी के मुख से ऐसा सुना नहीं है कि मैंने क्रोध अभी तक किया नहीं है। बचपन से सबको इस बात का अनुभव रहता है, किसी न किसी रूप में कभी न कभी किसी न किसी के ऊपर जरूर मनुष्य क्रोधित होता है और नहीं तो अपने ऊपर होता है। इस पर कैसे विजय पाए?
कुछ लोगों का संस्कार क्रोध का हो जाता है
जी,
जो कारण हो या ना हो करते ही रहते हैं, और नहीं तो किसी को चलते हुए देखते ही गुस्सा करेंगे, है कैसे चल रहा है।
हाँ।
तो एक ये संस्कार क्रोध का हो जाना ये बहुत खतरनाक है। दूसरी चीज है कि कुछ कारण बन रहे हैं, भाई लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या कोई बिना मतलब हम पे कमेंट्स कर रहा है, या बिना मतलब हमें निंदा चुगली या शिकायतें कर रहा है, कुछ कारण बन गए, किसी को तब गुस्सा आ जाता है, बाकी वो शांत रहते हैं। और तीसरे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कम आता है, जो अपने क्रोध को समाप्त कर लेते हैं, पी लेते हैं, उन्हें ये अपने में विश्वास रहता है कि हम क्रोध को समाप्त कर लेंगे।
बहुत कम लोग हैं।
हाँ, क्रोध के बारे में वो अवेयर हैं और वो ज्यादातर अवॉइड करते हैं क्रोध को, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे नुकसान बहुत होते हैं। हमने देखे तो एक बड़ा अधिकारी क्रोध के कारण असफल रहा जीवन में, उसे अपने पद से रिजाइन देना पड़ा। एक बहुत अच्छा फैक्ट्री का मालिक क्रोध के कारण, क्योंकि इतना क्रोध करता था, उसके पास 50 लोग काम करते थे, लेकिन उस क्रोध के कारण उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, उसके परिवार भी खर गए। तो क्रोध सचमुच बहुत ही नुकसानदायक है। एक घटना अभी अभी की है, बिल्कुल सच्ची है, कि एक लड़के ने गुस्से में आकर अपनी बूढ़ी माँ को इतना मारा, इतना मारा कि खून लहू लुहान हो गए, बेचारे के दांतों में भी चोट लग गई, सिर में भी चोट लग गई। किसी ने उसकी वीडियो बना ली थी और वो पुलिस के पास दिया गया, तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब देखो माँ की ममता, माँ पुलिस वालों कह रही मेरे बेटे को छोड़ दो, इसे गुस्सा आ जाता है। मतलब मन को हिलाने वाली बात है कि बच्चा इतना क्रोध कर रहा है और माँ ममता की छाया उस पर अभी भी रखे हुए है। लेकिन इस बच्चे का क्रोध निश्चित रूप से ऐसे पर तो क्रोध और
सही तो नहीं ठहरा सकती,
बिल्कुल सही नहीं ठहरा सकते हैं। मनुष्य अपनी बात तो कहता है, लेकिन अगर वो क्रोध से कहता है तो माहौल में तनातनी हो जाती है। और एक अच्छा निर्णय, एक अच्छा चिंतन, देश के लिए कुछ अच्छा विचार जो होना चाहिए वो नहीं होता है। किसी भी कोई बिल पेश किया गया उसके लाभ हानियों पर बहुत कम चर्चाएं हो पाती हैं। तो ये नुकसान हो रहा है ना क्रोध के कारण। तो हम सभी ये लक्ष्य बना लें कि हमें अपने अंदर इसको संस्कार नहीं बनने देना है। मान लो एक टीचर है, स्कूल में मास्टर है
जी,
अभी बच्चे छोटे हैं, वो चंचल भी हैं, शरारत भी करते हैं, वो कभी काम भी नहीं करके आते हैं, टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी हम सुनते हैं कि किसी टीचर को इतना गुस्सा आ गया कि बच्चे की इतनी मार पिटाई कर दी कि पैर में फ्रैक्चर हो गया, या उसके मुंह से खून आ गया, या उसके थप्पड़ इतने मार दिए कि एक आंख चली गई। ये क्रोध का संस्कार जो बड़ा भयावह है, इस पर तो हमें विजय पानी ही है। अब देखिए, उस टीचर को भी जेल हुई, बदनामी हुई, अखबारों में छपा, गुरुजनों के प्रति लोगों ने अलग अलग बातें कही,
टीचर को बाद में पता चलता है कि मैंने इतना क्रोध
किया,
संस्कार काम कर जाए।
और बदनामी हुई कि गुरु तो सम्मान के पात्र हैं, लेकिन गुरु लोग कैसे अपने सम्मान को खुद खो रहे हैं। अभी दूसरी चीज ये है कि बच्चे काम नहीं करते, टीचर उन्हें आंख दिखाता है, उन्हें थोड़ा डांटता है, एक आधा लगाता भी है, उसमें उसकी सद्भावनाएं भरी होती है। और ये सद्भावनाएं बहुत जरूरी हैं। कई बच्चे जब बड़े हो गए हमारे साथ ही, वो याद करते अपने मास्टर जी को कि अगर वो हम पे ऐसे टाइट न रहे होते तो हम कुछ न पढ़ पाते। उनकी टाइटनेस ने, उनके थोड़े से गुस्से ने हमारा जीवन बना दिया, वो उनको मन से धन्यवाद,
मनो सिखाने के लिए करें।
तो हम, मेरा कहने का अर्थ है कि सभी इसको महसूस करें। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि क्रोध को अपना संस्कार न बना ले, कि वो अग्नि बनकर हमारी शांति को जलाता रहे, हमारी खुशी पर आघात करता रहे, वो हमारे विवेक को नष्ट करता रहे, वो हमारे संबंधों में कड़वाहट घोलता रहे, जहर घोलता रहे। लेकिन कहीं कहीं अगर थोड़ा सा हो गया, मैं इसमें दूसरी बात लोग कहता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा क्रोध आ गया, जल्दी से जल्दी उसको कंट्रोल करो, ये नहीं उसको चलने दे रहे हैं, क्योंकि उसके इफेक्ट बहुत बुरे होते हैं, कान पर उसकी बुरी छाया पड़ती है। क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत काम चलते हैं, हालांकि हमारे यहाँ तो क्रोध का ऐसा आवेग किसी में होता नहीं है, पर थोड़ा सा भी आ गया तो वो व्यक्ति जल्दी अपने को कंट्रोल कर लेता है। तो इन चीजों पे हमें इस तरह ध्यान देना चाहिए कि हमारा क्रोध हमारा संस्कार न बन जाए। लेकिन काम निकालने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनसे मेहनत कराने के लिए थोड़ी सी आंख दिखाई, बस ये है। टीचर का उदाहरण देकर मैं कहूंगा, कोई अधिकारी, कोई व्यापारी, जो क्रोध आपने वहां किया वो इतना चालू न रहे कि वो घर तक आपके साथ चले,
लेकिन आजकल चलता है भाई,
फिर वो बच्चों पे उतरेगा, फिर वो पत्नी पे उतरेगा, फिर वो बूढ़ी माँ पे उतरेगा, ये नहीं।
तो कई बार बोलचाल में कहते हैं किसका गुस्सा किसके ऊपर,
किसके ऊपर, यही हो जाता है। तो हम इतने तक तो अपने को संभालें कि अगर मान लो कर्म क्षेत्र पर हमें करना पड़ा, मैं ये सब कहूंगा, तो उसको वहीं समाप्त करें। जब हम वहां से बाहर आ रहे हैं, मान लो एक पीरियड था 45 मिनट का, अब कुछ भी हुआ, हमें गुस्सा भी आया, हमने एक दो को मार भी दिया, अब वहां से जब हम निकले, हम अपने को पुनः रिलैक्स करके निकले, क्योंकि हमें दूसरी क्लास में जाना है, और क्रोध के मूड से यदि हम दूसरी क्लास में जाएंगे तो पढ़ाएंगे क्या।
और उस बच्चे के ऊपर जिसके ऊपर क्रोध की है, उसके ऊपर भी अब मतलब अब हमारी दृष्टि बदल जाए।
बिल्कुल, उसे उतना प्यार दे दे। ये हमने बहुतों को सीखा कि अगर टीचर ने किसी बच्चे को एक मार भी दिया, डांटा डपटा, तो फिर बाहर जब आ रहे तो बहुत प्यार करता है,
नहीं तो वो बच्चे के मन में रहता है भाई जी किसने मुझे क्लास।
तो इससे क्या होता है कि वो बच्चे ये समझते हैं हमारे मास्टर जी हमारे लिए बहुत अच्छी है, डांटते तो हैं, हमारे फायदे के लिए डांटते हैं, तो उनके मन में कुछ निगेटिव फीलिंग नहीं रहती।
आज हम देखते हैं कि कई बार जैसे क्रोध पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, कभी कभी अचानक आता है और बहुत बवंडर पैदा कर देता है। तो क्या जैसे इन सब के ऊपर मन से कंट्रोल किया जा सकता है कि मन को शांत रखें, जिससे हमारा क्रोध पर विजय पाया जाए या क्रोध के ऊपर शांति हो, क्रोध को हम थोड़ा सा दबा सकें थोड़ी देर के लिए ही सही, कम से कम, कि उस पर धीरे धीरे करके विजय पाए और हमारा संस्कार बन जाए भविष्य में।
आचार्य द्रोण जी गुरुकुल में थे और सभी पांडवों को वहां शिक्षा के लिए भेजा गया, तो जब पहला पाठ ही पढ़ाया गया कि एक व्यक्ति को क्रोध पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, सबसे पहला पाठ यही है कि आप अपने क्रोध पर कितना विजय प्राप्त कर सकते हो, तो युधिष्ठिर को यह बात बहुत लग गई कि इस पर विजय प्राप्त करना क्या इतना मुश्किल है, तो उन्होंने ये प्रयास किया
जी।
तो दूसरा पाठ जब शुरू हुआ तो दूसरे पाठ में वो गए नहीं, वो बोले जब तक मेरा ये पहला पाठ पक्का नहीं होगा मैं दूसरा पाठ पढ़ूंगा ही नहीं। कुछ दिन हुए, परीक्षक जी आए, उनकी परीक्षा लेने के लिए, बीच बीच में परीक्षा ली जाती थी, तो बाकी पांडवों की तो परीक्षा हुई अलग अलग रूप से, वो पास हो गए, लेकिन जब युधिष्ठिर की बारी आई तो उन्होंने कहा कि आपने क्या क्या पढ़ा, तो उन्होंने बोला अभी मैं पहला पाठ ही पढ़ा हुआ। तो परीक्षक को थोड़ा आया कि इसने इतने समय में सिर्फ एक पहला पाठ ही किया है, तो उन्होंने छड़ी से उनको मारना शुरू किया और वो सहन करते रहे कि मुझे गुस्सा आना नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से जो भी मेरे साथ व्यवहार जैसा भी करेगा लेकिन मैं करूंगा नहीं गुस्सा। उन्होंने बहुत सहन किया और फिर उसे आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास ले जाया गया और बाकी लोग तो बहुत आगे बढ़ गए। तो उन्होंने आचार्य द्रोणाचार्य जी ने परीक्षक को यही कहा कि इन्होंने पहला पाठ पूरी तरह से अपने आचरण में ले आया। तो देखा गया कि दृढ़ संकल्प चाहिए, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें जब तक हमारी दृढ़ता नहीं है तब तक हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और ये संभव है, हमने दृष्टांत भी काफी देखे हैं और हमने इसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी लाया है। जो भाई साहब ने कहा कि आता तो है लेकिन कंट्रोल भी किया जा सकता है और धीरे धीरे विजय प्राप्त की जा सकती
है। जो घर परिवार में है, सास बहू रहते हैं साथ में, माँ बेटा रहते हैं, बाप बेटा रहते हैं, कई बार हम देखते हैं कि कभी कभी बहुत प्यार का वातावरण रहता है लेकिन कभी एक ने कोई छोटी सी गलती कर दी तो उसके कारण से भी पूरा परिवार का वातावरण या एक को भी गुस्सा आता है। मान लो सब लोग थोड़ा शांत है लेकिन अगर घर परिवार में एक पिताजी को गुस्सा ज्यादा आ रहा है या कभी कभी मम्मी को ज्यादा गुस्सा आ रही है तो उसका भी पूरा वातावरण पूरा परिवार का जैसे नर्कमय बन जाता है।
बिल्कुल।
तो कैसे अपन परिवार में, गृहस्थ में, समाज के बीच, पड़ोसियों के साथ, वहां पर कैसे हम गुस्से पर विजय प्राप्त करें?
अटेंशन की जरूरत है, दृढ़ संकल्प की जरूरत है, इच्छा शक्ति की जरूरत है, बहुत अच्छी तपस्या साधना चाहिए तब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा एक असुर है। इस क्रोध पर विजय प्राप्त करने के वो है प्रेम और शांति। जितना हम अपने चित्त को, मन को शांत रखेंगे, मौन में रहेंगे, कुछ समय को डिले करेंगे। हम क्या करते हैं, क्रोध क्या करता है, जैसे ही एक्शन हुआ उधर से रिएक्शन, उसने मुझे आंख दिखाई तो मैंने क्या किया, मैंने भी आंख दिखा दी।
किसी ने एक मारा तो सामने ने
दो मार दिए, किसी ने मेरे ऊपर चिल्लाया एक बोला मैंने 10 बोल दी। जब तक मैं 10 नहीं बोलूंगी तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो क्रोध क्या करता है, तुरंत ही रिएक्शन करता है। तो जब क्रोध हो रहा हो, अदर पर्सन अगर क्रोध कर रहा है, उस समय अगर मैं अपनी एक ये धारणा बना लूं कि जब कोई क्रोध कर रहा है कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए मुझे मौन में रहना है, चुप रहना है, डिले करना है उस टाइम को, वो अशुभ टाइम चल रहा है, इतना भी मैं ध्यान रखूं ना ये राइट टाइम नहीं है, ये अशुभ टाइम है मेरे लिए, और यदि इसमें मैंने मुंह खोल दिया तो मेरे लिए बहुत कुछ अशुभ हो सकता है, तो उसको डिले करूं मैं, शांत रह करके, चुप रह करके, पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ डिले करने की कोशिश करूं। मुझे याद आ रहा है एक बार हम जेल में सेवा करने गए, महिलाओं की जेल थी
जी।
एक 18 साल की बड़ी क्यूट सी बच्ची सामने आई तो उसे देख के मैं इतनी हैरान हो गई, ये देखने में इतनी इनोसेंट है, इतनी भोली है, ये जेल में क्या कर रही है। मैं उसके पास गई तो वो भी बैठी थी, हमारे जो लेक्चर हो रहे थे वो भी सुन रही थी, तो उसके पास विशेष उठ करके गई और मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपका कोई है क्या इधर? बोला नहीं मैं ही हूँ इधर।
अच्छा।
तो मैंने पूछा कि इतनी छोटी उम्र में तुम इतनी इनोसेंट दिख रही हो और लगती नहीं हो कि तुम कोई ऐसे प्रोफेशनली हिंसा किया, कुछ क्राइम करके यहाँ पर आई हो, तुम्हारा चेहरा तो बड़ा इनोसेंट लग रहा है, तुमने ऐसा क्या कर दिया? तो देखिए उसने क्या बताया, बोला जब मैं पैदा हुई तो मेरे बाप को बेटा चाहिए था, मैं पैदा हुई तो दोषी मैं क्यों पैदा हुई, बहुत प्रयास किए मुझे मारने के लेकिन मैं नहीं मरी। अब जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ मेरा बाप मुझे यातनाएं देता जा रहा है। बोला मेरे बाल काट दिए उसने।
अच्छा।
मेरे को वो दीवारों में पटकता है, मेरा सर फोड़ता है, उसके हाथ में जो आ जाता है वो मेरे को मारता है। एक दिन भी 18 साल में ऐसा नहीं गया होगा जब उसने मुझे यातनाएं ना दी हो, चाहे वो शारीरिक यातनाएं हैं या मानसिक यातनाएं हैं। फिर उसने बोला मेरी जो सहन शक्ति का लेवल था, जो सीमा थी, वो क्रॉस हो गई। और एक दिन भाला पड़ा था, मैंने भाला उठाया और अपने बाप के पेट में डाल दिया, वो इन द स्पॉट खत्म हो गया और मैंने आके खुद सरेंडर किया पुलिस को। तो मैंने उसको बोला, तुम पहले भी पुलिस का सहारा ले सकती थी, घरेलू हिंसा के बहुत अच्छे रूल्स बने हमारे यहाँ, और मैं कहती हूँ जो हमारे यहाँ रूल्स बने उनका भरपूर फायदा लेना चाहिए। हम अत्याचार भी क्यों सहन करें, क्यों हम अन्याय सहन करें, हमें भी जीने का हक है। तो तुम पहले पुलिस के पास आ जाती, बता देती मेरा बाप मुझे ऐसे ऐसे मारता है, तुम्हारे पास तो प्रूफ थे ना, तुम्हारे शरीर पे चोटें लगी हुई थी, तुम यहाँ के कंप्लेन कर सकती थी, चलो तुम्हें मान शान की चिंता थी, बदनामी होगी मेरी, पापा की, घर की, कि बेटी ऐसी निकली, बाप को पकड़वा दिया, ठीक है ये चिंता थी, तो तुम कहीं चली जाती, कुछ कर लेती, अकेली रह सकती थी, गुजर बसर कर सकती थी, और भी कुछ नहीं तो हजार काम है, किसी के घर में तुम सर्वेंट भी बन के रह सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। लेकिन उस समय के क्षण भर के क्रोध ने उसकी बुद्धि को इतना मलिन कर दिया कि वो अपने बाप को मारने से नहीं चूके, आज शातात कर रही है। ये क्रोध ऐसा है कि सबसे पहला वार इसका होता है हमारी बुद्धि पर, हमारे विवेक पर, जो सूझबूझ को खत्म कर देता है
जी।
और जब जाता है तो सारी उम्र के लिए रुलाता हुआ छोड़कर जाता है, पश्चाताप की अग्नि देकर के जाता है।
माना कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कोई सामने वाला हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है तो हम भी उस समय उसका सामना करें, हर चीज का बिल्कुल सहन ही न करते रहें और इतना सहन न कर लें कि वो ओवर हो जाए, है ना।
आपको मच्छर काट रहे हैं
जी,
बार बार एक मच्छर आके एक जगह काट लिया, दूसरी जगह काट लिया, एक नेचुरल सी नेचुरल सेल्फ डिफेंस के लिए तीसरी बार भाग करके उसको वहीं का वहीं खत्म कर देते हैं, क्या ये भी क्रोध में गिना जाएगा क्या?
जी 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 भाई साहब, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि मनुष्य पर वार होने लगता है, क्या उस समय अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करें, उस समय अपनी सुरक्षा कैसे करें?
ये प्रश्न बहुत ही ज्वलंत है आज के समय में कि मनुष्य को भिन्न भिन्न जगह पर क्रोध आता है। मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दूं, आतंकवादियों ने हमारे सोए हुए सैनिकों का शिविर जला दिया
जी।
हर व्यक्ति को क्रोध आया, मुझे भी आया
जी,
मुझे क्रोध बहुत कम आता है, मिनिमम मुझे भी आया। वो हमारे सैनिकों का सिर काट कर ले गए, हर व्यक्ति का दिल दहल गया, खून खोलने लगा, हमारा भी यही हाल हुआ। तो देखिए ये ऐसी परिस्थितियां हैं, नारी पर कहीं अटैक होता है, गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं, उसको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, किसी देश की सेना दूसरे देश पर आक्रमण कर देती है, उनको डिफेंस अपने को सुरक्षित रखने का, उनके वार का जवाब देने का अधिकार है, इसको क्रोध नहीं कहा जाता। ये सिचुएशन ही ऐसी है और मनुष्य को जहां जहां जैसा रिएक्शन करना चाहिए वो अवश्य कर लेना चाहिए, जो जहां उचित है। अभी दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रहे हैं, उनको इस चीज का आभास नहीं, वो बदला लेना चाहते हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ के हर व्यक्ति को क्रोध आता है और उसका देश प्रेम की भावना इसके पीछे बीज है ना। तो यहाँ हमें डिफेंस ही नहीं करना चाहिए, प्रत्युत्तर भी देना चाहिए, उन्हें ऐसा भी सबक सिखाना चाहिए ताकि वो ऐसा साहस न कर पाए
जी।
हमारी सरकार कर रही, पर मैं और कहना चाहूंगा और ज्यादा कर देना चाहिए, जैसे हमारे देशवासियों की डिमांड है, ये हमारा अधिकार है। तो ऐसे ही कहीं की बहनों पर कुछ अटैक होता है, उन्हें उस अपनी सुरक्षा के लिए आजकल सिखाए भी जा रहे हैं बहुत सारे गुरु भी, उनको अप्लाई करना चाहिए, इसको क्रोध नहीं कहा।
कई बार हमारे भले परिवार के नहीं है, समाज में है, किसी और की बहू बेटी है, अगर उनके साथ अत्याचार होता है और सुनते हैं न्यूज़पेपर में या टीवी में तो कई लोग बोलते हैं मेरा खून खौल उठाए,
ये बहुत ये मनुष्य की एक नेचुरल इमोशनल फीलिंग है ना, इसको मारा नहीं जा सकता है। अब जहाँ चाहे हमारा उनसे नाता हो या ना हो, पर किसी की बहन पर बेटी पर कुछ अत्याचार हो रहा है तो हरेक को लगता है कि हम कुछ करें, लेकिन कानूनों में कुछ बंधे होने के कारण मनुष्य नहीं भी कर पाता। लेकिन बस बात ये, इसको क्रोध नहीं कहा जाता है, ये कुछ और चीज है जो हर एक का कर्तव्य है। हमें तो ध्यान ये देना है कि हमारे मन में व्यवहारिक तौर पर एक दूसरे से बदले की भावना न होनी चाहिए कि इसने चार दिन पहले मुझे ऐसा कहा था, अब वो गुस्से में घूम रहे हैं, मैं मौका मिले कहीं मुझे अकेले में मिले और मैं इसको ऐसे ऐसे करूं। ये जो व्यक्तिगत संबंध में बदले की भावना है, ये हमारी खुशी को नष्ट करती है, हमारे पारिवारिक संबंधों को बिगाड़ती है, इससे हमें अवश्य बचना चाहिए। ठीक है, उसने हमसे कुछ बुरा किया है, मनुष्य को गुस्सा आता है, ये भी एक मनुष्य की एक नेचुरल सी प्रवृत्ति है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि कोई 10 बार बुरा करता रहे, हमें सताता रहे और हम बिल्कुल डेड रहे। मनुष्य की इमोशंस उसको जगाती हैं और वो बदला लेने के लिए सोचता है, लेकिन हमें इसमें संभलना है कि ये बदला कहीं फिर वो बदला ले, फिर हम बदला ले, कहीं हमारी प्रगति को न रोक दे।
जी,
राजवंशों में ये होता रहा, एक ने दूसरे पे अटैक किया, फिर उसने किया, फिर उनके बच्चों ने उसने किया, फिर उनके बच्चों ने बदला लिया, और ये परंपरा ने दोनों को कमजोर कर दिया, फिर कोई तीसरा आया और दोनों को जीत लिया। तो हम ये ध्यान रखें कि इन चीजों से हमारी जो उन्नति हो रही है वो न रुक रही हो, इसका बहुत ध्यान रखना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने चित्त को शांत भी करें और उसे बहुत पावरफुल भी बनाएं। जैसे हम सुनते हैं स्वामीनारायण संप्रदाय है गुजरात में विशेष ज्यादा, उनके जो आदि थे जिन्होंने स्थापना की, वो छोटे बच्चे ही थे, कहीं गांव में गए थे, रात को उनको स्थान दिया, लोगों ने डरा है यहाँ शेर आता है तुम्हें खा जाएगा। तब तक स्वामीनारायण आदि का उनसे कोई नाता नहीं था, ना कोई उन्हें जानता था, लेकिन उसको जगह ही वही थी, वो अपनी साधना में बैठ गया, शेर आया उसके इधर उधर घूमता रहा, लेकिन शेर को साहस नहीं हुआ कि उसको खा जाए, उसकी शांति के वाइब्रेशंस ने कहीं ना कहीं शेर की हिंसक मनोवृत्ति को बदल दिया था। तो हम अपने को शांत भी करें, प्रेम की बात तो हम कर ही रहे हैं, पर मैं तीसरी बात जोड़ता हूँ, शक्तिशाली भी बनाएं। एक शक्तिशाली व्यक्ति ही धैर्यवत हो सकता है, एक शक्तिशाली व्यक्ति ही विभिन्न परिस्थितियों में अपनी शांति को कायम रख सकता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति के वाइब्रेशंस दूसरों को भी ऐसा करेंगे कि वो हमारे विरुद्ध कुछ करें ही नहीं।
जी,
मान लो आप ट्रेन में जा रहे, कोई बहन जा रही है, लेकिन उसके वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली हैं।
हाँ।
तो दूसरों को संकल्प नहीं उठेगा कि वो उनके लिए कुछ करें, उनका बैग उठा ले जाएं। तो हमें प्रेम, शांति और शक्ति तीनों का बल अपने अंदर भरना चाहिए। प्रेम में भी बहुत शक्ति है, तो शांति तो बहुत बड़ी शक्ति है, साइलेंस पावर जिसे कहते हैं, और अपने पावरफुल संकल्पों के द्वारा हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं तो ये क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और कहीं ऐसी परिस्थिति भी नहीं आएगी या मिनिमम आएगी जो हमें क्रोध करना पड़े और अपनी शांति को नष्ट करना पड़े।
भाई साहब, संजय भाई, गीता बहन, आप तीनों अपने अनमोल विचार हमारे दर्शकों के लिए रखा। सचमुच हमें आज ये ज्ञात हुआ कि इस पर विजय भी पाया जा सकता है, मन को शांत रखा जा सकता है, बुद्धि को स्थिर करके परमात्मा की याद में रहें और धीरे धीरे करके उस पर विजय प्राप्त अवश्य किया जा सकता है। आप तीनों अपना अनमोल समय निकाल करके आए, उसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद। आज विशेष रूप से इस चर्चा के माध्यम से हम जानकारी मिली कि जीवन में अगर कभी मन अशांत होता है, कभी घर का वातावरण थोड़ी देर के लिए खराब होता है, तो विचलित ना हो जाए, धैर्यवत होकर के मन को शांत करके चित्त को स्थिर करके उस पर पार पाया जा सकता है। जैसे कहीं अग्नि जल रही है तो उस पर शीतल जल का छींटा डाल करके उस अग्नि को बुझाया जा सकता है। अगर घर में कोई क्रोधी व्यक्ति है, बार बार उसको क्रोध आता है, तो उसके साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा हो, उसको निग्लेक्ट न करें, उसके लिए न मन में बना ले कि ये तो क्रोधी व्यक्ति है, इसके आते ही घर का वातावरण पूरा बिगड़ जाता है, बल्कि उसके प्रति भी हमारी भावनाएं अच्छी हो, उसको भी सुधारने के लिए प्रयास करें। और आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाते जाते इतना एक संकल्प जरूर ले लें, रोज सुबह उठते ही एक बार संकल्प रोज करें कि मुझे दिन भर शांत रहना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है। रोज अभ्यास करें तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ क्रोध का जो बीज है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।